अभिमन्यु ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर से कहीं खो गई आप? ऐसे क्या सोचने लगती हैं बीच बीच में बात करते हुए? अभिमन्यु का हाथ जैसे ही इप्सिपा के हाथ को छुआ, वो एकदम चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके ऐसे मना करने पर अभिमन्यु थोड़ा कन्फ्यूज होकर इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता ने मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमन्यु भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद एक एयर होस्टेस आई और उसने उन दोनों को रात का डिनर दिया। डिनर करने के बाद इप्सिता अपने मोबाइल फोन में किसी को कुछ मैसेज कर रही थी। अभिमन्यु भी चुपके से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने इप्सिता से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ना तो इस बार इप्सिता ने कोई रुकावट डाली और ना ही अभिमन्यु ने, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से देख पा रहे थे। अभिमन्यु आज काफी सारी मीटिंग्स और बाकी सारा काम खत्म करने के बाद एयरपोर्ट पहुंचा था। वो काफी थका हुआ था, इसलिए वो चुपचाप वहीं आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन इप्सिता, जो मुंबई पहुंचने के लिए काफी उत्साहित थी, उसकी आंखों में जरा सी भी नींद नहीं थी। अभिमन्यु जैसे ही अपनी आंखें बंद करके सीट पर लेटा, कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। इप्सिता ने जब अपना मोबाइल फोन साइड में रखा तो फिर वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमन्यु सो रहा है, इसलिए वो आराम से अपने गाल पर हाथ रखकर अभिमन्यु की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसे अभिमन्यु की कई बातें याद आ रही थी और जितनी बार भी अभिमन्यु ने उसकी मदद की थी, वो सब कुछ याद करके वो मन ही मन मुस्कुराती जा रही थी। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए इप्सिता ने अपने मन में कहा, पता नहीं क्यों पहले मीटिंग में इतना रूखा व्यवहार किया था, जबकि असल में तो मिस्टर अभिमन्यु बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। सगाई से लेकर अब तक कितनी बार मदद की है इन्होंने मेरी, और वो भी बिना एहसान जताए। यहाँ तक कि मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने देते। नंदिनी सही कहती है, शायद सच में मैं बहुत लकी हूँ जो अभिमन्यु मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। कम से कम समझदार तो हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और क्या चाहिए हमें? ये सब कुछ इप्सिता अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी, और तभी अचानक उसे कुछ ध्यान आया। वो अपनी सीट पर एकदम सीधी होकर बैठी और खुद से बोली, अरे ये सब क्या सोच रही हूँ मैं, पागल तो नहीं हो गई कहीं? और सिर्फ मैं ही क्यों, वो भी तो लकी है जो मैं उन्हें मिल रही हूँ। इतना बोलते हुए इप्सिता ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, नहीं लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हम तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ठीक से ये भी नहीं जानते, क्योंकि अपनी कोई प्रॉब्लम अभिमन्यु कभी हमें बताते ही नहीं है, या फिर शायद हमने भी तो कभी नहीं पूछा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हमें जब भी मौका मिलेगा हम उनसे उनकी लाइफ और प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अपनी आने वाली लाइफ के बारे में ये सब कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद इप्सिता को भी नींद आ गई। उसने आंखें बंद कर ली और लगभग दो घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट आधे घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी। अनाउंसमेंट सुनते ही इप्सिता की आंख खुली और वो अपनी सीट से उठकर वॉशरूम चली गई। अभिमन्यु अभी भी नींद में था। इप्सिता वॉशरूम से वापस आई तब तक उन दोनों को फिर से कुछ स्नैक्स खाने के लिए परोसे गए और थोड़ी ही देर में प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। वे लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और अभिमन्यु इप्सिता के साथ ही एयरपोर्ट से बाहर निकला ही था कि उसने देखा वहां एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट पर एक बड़ी सी कार खड़ी थी और एक ड्राइवर अभिमन्यु के नाम का पोस्टर लेकर वहां खड़ा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कुंवर साहब अभिमन्यु राजवंशी ऐसा नाम लिखा हुआ था। अपने नाम का पोस्टर देखकर अभिमन्यु खुद ही उस ड्राइवर के पास चला गया और इप्सिता भी उसके पीछे पीछे ही आ गई। अभिमन्यु को आते देखा वो ड्राइवर धीरे से अपना सिर झुकाकर बोला, वेलकम कुंवर साहब। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे हम अपने राजमहल में नहीं है, ये मुंबई है, यहाँ पर आप हमें सर कहकर बुलाइए। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही उस आदमी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, आपके लिए ये हमारी कार है, आप अंदर बैठिए, हम अभी आपका सामान रखते हैं। इतना बोलकर वो ड्राइवर जल्दी से कार के पास आया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और अभिमन्यु ने पहले इप्सिता को कार में बैठने के लिए कहा। जैसे ही इप्सिता कार में बैठी अभिमन्यु भी उसके बगल में बैठ गया और वो ड्राइवर उन दोनों का सामान कार की डिक्की में रख रहा था। इप्सिता ने कार में बैठते ही अपने मन में चल रहा सवाल पूछा, आप यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब दिया, यहाँ पर मुंबई में भी हमारा एक विला है, वहीं रहेंगे हम। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, तो क्या आप हमें हमारे हॉस्टल तक छोड़ सकती हैं? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसने थोड़ी हैरानी से कहा, लेकिन आप हॉस्टल में क्यों रहेंगी, आप तो हमारे साथ हमारे विला में रहेंगी ना? जैसे ही इप्सिता ने ये बात सुनी वो शॉक्ड होते हुए बोली, क्या, लेकिन हम आपके साथ विला में कैसे रह सकते हैं? अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर कहा, क्यों नहीं रह सकती, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी हम आपको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से लाए हैं, तो हम आपको हॉस्टल में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? इप्सिता ने कहा, लेकिन हम हॉस्टल में अकेले नहीं रहेंगे, वहाँ पर हमारी सारी दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात नंदिनी, वो हमारी रूममेट है, हम उसके साथ रहेंगे, और वहाँ से हमें एग्जाम देने में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस वहाँ से पास में ही है। अभिमन्यु कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अभिमन्यु ने तुरंत अपने मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन की तरफ देखा, जिस पर कोई ऑडियो कॉल नहीं बल्कि वीडियो कॉल आ रहा था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। अभिमन्यु ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। माँ ने जैसे ही अभिमन्यु की तरफ देखा उन्होंने पूछा, गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, क्या आप मुंबई पहुँच गए हैं? अभिमन्यु ने कहा, गुड मॉर्निंग माँ। हाँ, हम बस अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और अभी कार में ही हैं। माँ ने पूछा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से कहा, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं हुई है, हम लोग अच्छे से यहाँ पहुँच गए हैं। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने कहा, इप्सिता कहाँ है, हमारी उनसे बात कराइए। इप्सिता ने भी ये बात सुन ली और वो जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर मन ही मन मुस्कुराया और उसने फोन का कैमरा इप्सिता की तरफ घुमा दिया। इप्सिता ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? माँ इप्सिता की तरफ देखकर बोली, हम ठीक हैं इप्सिता, पर आपको अभिमन्यु के साथ ही रहना है। याद रखिएगा, अब आप सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं बल्कि राजवंशी परिवार की बहू भी बनने वाली हैं, इसलिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जल्दी से अपने एग्जाम खत्म करिए और यहाँ उदयपुर वापस आइए। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और माँ ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु, जैसे ही आप विला पहुंचेंगे हमसे फिर से बात करिएगा, हमें आपसे कुछ और जरूरी बात करनी है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्सिता माँ की बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी। इप्सिता को ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, अब बताइए इप्सिता, क्या आप अभी भी हॉस्टल जाने की बात सोच रही हैं? इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आप शायद अभी हमारे साथ रहने में सहज नहीं रहेंगी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारे कमरे अलग अलग रहेंगे।
इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से जैसे ही बात सुनी, उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस इसलिए हॉस्टल जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि हम हमेशा से यहाँ हॉस्टल में ही रहे हैं, तो हम वहाँ थोड़े सहज रहते हैं और वहाँ से हमारा कॉलेज भी 5 मिनट की दूरी पर ही है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, कहीं और से एग्ज़ाम के लिए जाते समय कहीं हम ट्रैफिक में फंस कर लेट ना हो जाए, आपको नहीं पता मुंबई का ट्रैफिक। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनकर कहा, अगर आप एग्ज़ाम को लेकर इतना परेशान हो रही हैं तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम खुद आपको आपके एग्ज़ाम में छोड़ने चलेंगे और वो भी समय से पहले ही पहुंचेंगे, जिससे कि आप लेट ना हो, और शाम को आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको वापस भी ले आएंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर कुछ बोलने जा रही थी लेकिन बोल नहीं पाई। तभी अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज़ इप्सिता, हमारी बात समझने की कोशिश करिए, आपकी माँ बाप और हमारी माँ सब ने हम पर बहुत भरोसा किया है और उन सब के विश्वास पर ही हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, और सोचिए अगर हम विला अकेले गए और आप अगर हमारे साथ ना हुई, और अगर जिस तरह से अभी माँ ने आपसे बात करने के लिए कहा था, अगर उन्होंने विला में ऐसी बात करने के लिए कहा तो फिर हम क्या करेंगे, और हम आपके माँ बाप और हमारी माँ दोनों में से किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकते। इप्सिता अभिमन्यु की बात समझ गई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। इप्सिता इतना बोलकर कुछ सोचने लगी। उसे फिर से सोचते हुए देखकर अभिमन्यु ने कहा, आप अपने एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अगर एग्ज़ाम में लेट होने की ही बात है तो हम आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले हॉस्टल छोड़ देंगे, आप एग्ज़ाम आराम से दे लीजिएगा, फिर हम आपको वापस यहाँ ले आएंगे, ये ठीक रहेगा, इससे आप नंदिनी के साथ भी रह लेंगी और आपको अपने एग्ज़ाम देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप हमारे साथ भी रह लेंगी, जिससे माँ और आपके माँ बाप को भी हम पर विश्वास रहेगा कि आप हमारे साथ हैं और हम आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभिमन्यु का ये आइडिया सुनते ही इप्सिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सही रहेगा। इप्सिता को इस तरह मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तक ड्राइवर भी सारा सामान डिग्गी में रखकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। अभिमन्यु ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, चलिए विला चलिए, हम यहाँ से सीधे विला चलेंगे। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे विला की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही गाड़ी चलाने लगा। क्रमशः